प्रकार है उनके हृदय में भावना उठ रही है कृष्ण से मिलने की, और इतना कामना उत्पन्न हो रही कि भग न वेगा, इनका वेग भग रहा है, ये बह नहीं रहे। नदी का स्वभाव है बहना, लेकिन कृष्ण को देख करके उनका गीत सुन करके उनके चरणों का स्पर्श करके बहना नहीं चाहते। तो इसका भाव ये है कि देखो सखी, नदियां अपने पति की तरफ जा रही थी समुद्र की तरफ, लेकिन कृष्ण को कह करके वो भी नहीं जाती है, भग्न देगा हो जाती। इस तरह का अपना मधुर भाव उसमें छिपा हुआ है कि जो जा रही थी पति के घर में समुद्र की ओर, वो रुक करके और कृष्ण के चरण को पकड़ती है, कमल का एक हार देती है। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हम कभी कृष्ण को कुछ देते नहीं है, मिलते नहीं। अरे नाम लेना मुश्किल है तो फिर मिलना तो, हम लोग तो नाम जप करते हैं, शौक से कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, लेकिन गोपियां भगवान का नाम बोल नहीं सकती थी। बोलने से उनको लोग बहुत बुरा मानते, ये अद्भुत है, रस है ग्रह का, नाम नहीं ले सकती थी। भय लगता था कोई जान नहीं जाए कि इसका कृष्ण से प्रेम है। हम लोग तो चाहते हैं दुनिया जान जाए कि हम कृष्ण को प्रेमी है, भय है चाहे नहीं है। ठीक हुई क्या आज के युग में यही है, जो नहीं है वो चिंता भी प्रस्तुत करना चाहता, वहां तो बाहर गए हैं छिपा रहे हैं। ये है नदियों का भाव कि अपने पति की ओर जाना छोड़कर कृष्ण के पास रुक रही है, और कृष्ण भी उनको स्वीकार कर रहे हैं, कमल का उपहार देती है, चाहते हैं कि कृष्ण की चरण से और जीवन भर करें। धन्य है नदियां। तो फिर दूसरी सखिया कहती है कि अभी सखी, ये जमुना की नदियां तो ब्रज में रहती हैं और श्री कृष्ण उसमें स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, गौओं को पानी पिलाते हैं, अगर उनका ये सौभाग्य है तो ये कौन बड़ी बात है। देखो आकाश में रहने वाले बादलों का सौभाग्य, ये कितने भाग्यशाली है, क्या कितना प्रेम है कि दृष्टा तपे ब्रज पशु सहगान गोपी संचार यंत्र मंगल निरंतम प्रेम प्रबुद्ध कृष्ण सख्यो विधा शुभ प्रसंग आतपे धाम में धूप में राम और बलराम और गोपों के साथ जब श्री कृष्ण पशु चराते हैं इधर उधर, तो पशु चलते हैं तो जहां जहां पशु जाते हैं वहां कृष्ण को जाना पड़ता है, चाहे वो धाम हो चाहे कुछ भी हो, जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे आराम से और पशु चल रहे हैं, तो पशु चल रहा है तो पशुओं को चलाने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ता है, तो कभी कभी धूप हो जाती है। तो इस धूप में कृष्ण को देख करके और बांसुरी बजाते हुए देख करके अम्बुदर या मेघ जो कृष्ण से बहुत प्रेम करता है तुरंत आकर कृष्ण के ऊपर छा जाता है। आतप जो आतप से रक्षा कर उसको आतप कहता है, तो एक छत्ता की तरह आकर के अपने देह से छाया करता है कृष्ण के ऊपर और छोटी छोटी बूंदे बरसाता है। सखी वो बूंद नहीं उसके आंसू है, कभी कभी कुसुमावली भी फूलों की वर्षा करता है, वास्तव में बादल वर्षा नहीं करता है, लेकिन देवता लोग जो आकर के वर्षा करते हैं कि मानो से तो कुछ फूल बादल पर अटक जाते हैं और बाद में गिरते हैं तो लगता है कि बादल वर्षा कर रहे हैं। तो फूल बरसाते हैं और प्रेम से कुछ सीकर बरसाते हैं और अपने शरीर से अपने सखा के ऊपर छाया कर देते हैं, क्योंकि वो भी घनश्याम है ये भी घनश्याम है, वो श्याम घन है सांवला बादल और श्री कृष्ण भी घनश्याम है। तो इस कारण से अम्बुज बादल मेघ सोचता है कि ये मेरा सखा है, ये मेरा मित्र है और घाम सहारा है, तो तुरंत आकर कृष्ण के ऊपर छाया करते हैं, जहाँ कृष्ण जाते हैं धाम में तुरंत वहां आ जाए। इस तरह क्योंकि इनका कितना प्रेम है, जड़ पदार्थ होकर के ये बादल कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हैं, कितना भाग्य है इनका। अपना देह ऊपर देकर छाया करते हैं, बादलों के ऊपर घाम लगता है, स्वयं घाम से आकर के कृष्ण के ऊपर छाया करते हैं, कितना प्रेम उनका है। हमें प्रेम करने की कोई छूट नहीं है, क्या करें, आत्महत्या करें कि क्या करें। उस तरह से धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम कृष्ण को किसी काम में नहीं आ पाते हैं। गोपियां दिन भर चिंता करते थे कृष्ण के पैर में कांटे चुभ रहे हैं, गाय चढ़ा रहे हैं, हार है, और सारा जगत कृष्ण का प्रेमी है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, प्रेम कर रहा है, लेकिन हमें प्रेम करने का अवसर नहीं। इसलिए विष्णु सत्या कहते हैं कि हरिष्ठ बादल आकाश में रहता है और घनश्याम के साथ उसकी मित्रता है, तो अपने मित्र से वह इतना प्रेम करता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य देखो कि वृंदावन में रहने वाली भिलनिया कृष्ण से किस तरह प्रेम करती है, वह क्या है? पुराहा पुलिंद उर्गाय पदा जनाग श्री कुंकुमेन दैतास्तन मंडित हेना तद्दर्शन स्मरुजस्त्रोदुषितेना लिंपंत आनंद कुछ ईर्ष्या के साथ बोल रहे हैं कुछ गोपियां। वो घटना किस तरह से है कि श्री कृष्ण कभी कभी दौड़े चलाते चलाते बीच में गायब हो जाते हैं, संकेत किए रहते हैं गोपियों से कि मैं इस समय पर वृंदावन के इस स्थान से अलक्षित रह जाऊंगा, मिलने आऊंगा, अथवा एक रूप गोपियों के साथ रह करके दूसरे रूप से गोपियों के पास मिलते हैं और गोपियों का कभी बल में आती है। विशेष करके श्री राधा रानी इस समय श्री राधा रानी श्री कृष्ण का साथ पा करके कृष्ण की सब तरह से सेवा करने लगती है। श्री कृष्ण एक ऊंचे आसन पर शिला पर बैठते हैं, राधा रानी नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ कर अपने प्रियतम के चरण कमल को सहलाने लगती है, उसमें कांटे चुभ रहे होंगे, पत्थर लग रहे होंगे, तो अपने गोद में लेकर कृष्ण के परम सुंदर परम कोमल सुगंधित चरणों को अपने वक्षस्थल में लेकर सहलाने लगते नीचे बैठ, क्योंकि राधा रानी का यही भाव रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं प्रिया हूँ, ये भाव नहीं रहता। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि असली सेवा पारतम पुनस्तुमान अदर्श नाम बल हतान करो कि तथा तथा विधा के लंपट हो मत प्राण मात्र सहयोगना करो। एक दिन की बात थी कि राधा रानी कहने लगी कि अरे सखी कृष्ण भेदबाज हैं, इतना वादा किए ये किए वो किए, लेकिन फिर भी चंद्रावली से उनका प्रेम नहीं जाता है, हमको छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी सखियों के पास, दूसरी स्त्रियों के पास, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनसे बहुत दुख मुझे हुआ। तो इस पर ललिता जी ने कह दिया कि जब इतने धूलते हैं कपट करते हैं तो छोड़ते हैं, उनसे क्या मतलब है? और इसी पर आधार काफी भिन्न है, आश्लिष सेवा का देता हम तुम अस्तुमान आश्लिष सेवा, यदि कृष्ण मेरा आलिंगन करे, मुझे अपराध ले प्रिया कह कर दे या मुझे पैरों से पीस दे मार दे, मैं उनके चरणों में रहूंगी, आशीष सेवा पाग रहता है, पाग रहता मैं उनके पाग में चरण में रहूंगी, और चाहे उठा करके हमारा आलिंगन कर ले अथवा हमें पैरों की ठोकर से मार दे, आशीष सेवा पाग रहता हूँ पुनस्ट मैं आदर्श मैं मर भटन कर दिया या मुझे कभी दर्शन न दे करके मुझे मर्म हटा कर दे, मुझे भूखी कर दे, या मेरे सामने ही मुझे दिखा दिखा करके किसी दूसरी गोपी के साथ में घूमे हो गए हैं, जथा तथा अभी विधा के लंपटो उन जो भी लंपटाई करें लंपटो जो करना हो करें, और कुछ भी करने के बाद मेरे वो प्राण ना पाए दूसरा कोई नहीं मेरा प्राण ना, जथा तथा अभी विधा के लंपटो मत प्राण ना था उसकी सब न आता है हमारा प्राण आपको दूसरा नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे कुछ हमारे करिए। बल्कि राधा रानी कभी कभी ऐसा प्लान करते हैं, विचार करते हैं कि यदि कृष्ण किसी गोपी के साथ रहने में सुख मानते हैं तो मैं उस गोपी से प्रार्थना करूं कि तुम कृष्ण के साथ रहो, मैं इसी बात में सुखी हूं कि हर प्रियतम सुखी रहे, मैं उनसे सुख नहीं चाहते, हमारा सुख यही है कि वे सुखी रहे। तो राधा रानी वृंदावन में आकर कृष्ण के चरण कमल को अलक्षित निकुंज में सहलाने लगती है, कृष्ण ऊंचा बैठे हैं राधा रानी नीचे, तो कृष्ण के चरणों को सहलाते समय वो अपने के चरणों को अपने स्तन पर भी रखती है सुख देने के लिए, और राधा रानी के स्तनों में कुमकुम का लेप होता है, केसर का लेप होता है, केसर, तो सब है कुंड में। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरण में वो केसर लग जाता है, उसका लेप लग जाता है। और उसके बाद श्री कृष्ण जब वहां से चलते हैं तो उनके चरणों का केसर घास पर थोड़ा थोड़ा लग जाता है। तो उधर देर होते तो राधा रानी भी जल्दी जल्दी अपने घर लौटते हैं, कृष्ण भी सखाओं के पास चले जाते हैं। तो घास पर जो केसर लगा होता है कृष्ण के चरण का, तो उसको वृंदावन में रहने वाली दुल्हनिया वनवासिनी स्त्रियां उसके सुगंध से प्रभावित होकर आती हैं और इस केसर को लेकर के अपने आनंद कुचे सिंह लिखा गया अपने आनंद पर, अपने मुख पर और अपने स्तनों पर लगाती हैं चाहता, और उससे कृष्ण मिलन जैसा उनको आनंद होता है, हृदय की सारी व्यथा चली जाती है। तो उसी को कह रहे हैं सत्य प्यारी सखी वृंदावन की भुलनिया धन्य पूर्णा, पूर्णा मन धन्य पूर्णा पूर्ण गाय पदार्थ जुड़ा गुरु गाय पदार्थ जुड़ा हुआ श्री कृष्ण के चरण कमल के राग को, श्री कुमकुम को, केसर को, जो दैता स्तन मंडित है ना, जो दैता के राधा रानी के स्तन से मंडित रहता है, ऐसे केसर को भुलनिया अपने मुंह में और स्तन में लगा करके सुखी होती है, धन्य है। हमारा जीवन अधन्य है, वृंदावन वन में रहने वाले भुलनिया धन्य है, इन पर कोई बाधा नहीं है कृष्ण से प्रेम करने में। ये सौभाग्य है भुलनियों का, राधा रानी के स्तनों का केसर कृष्ण के चरण में, और कृष्ण के चरण से वो केसर घास पर, तो वृंदावन की घास धन्य है, उसके बाद वो भुलनिया धन्य है। इस तरह कृष्ण के साथ उनका संबंध है, लेकिन हमको कभी वो भाग्य नहीं हुआ कि हम केसर अपने मुख में लगाए या अपने स्तन में लगाए। तो वृंदावन की भुलनिया पूर्ण है, सुखी है, पूर्ण पुलिंद उगाय पदार्थ राग श्री कुमकुम तदर्शन स्मर रुज स्त्रीन लिंपंत आनंद कुचे कृष्ण से मिलन की एक जो लालसा है, व्याकुलता है, वो कृष्ण के चरण केसर को पा करके पूरी हो जाती है। एक बहुत सुंदर लीला है, समय कम होने से बहुत संक्षेप में आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरी सखिया कहती है कि अभी सखी वृंदावन में रहने वाली दुल्हनिया जो सचेतन है उनकी क्या बात कर रही है भाग्य की। शिला में गोवर्धन के अपना भाग्य देख, वास्तव में भगवान के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन, कृष्ण के सेवकों में सबसे बड़े गोवर्धन ये सेवा करते हैं, हमें तो सेवा करने का कभी अवसर नहीं मिला। तो गोवर्धन के विषय में बोल रहे हैं, हंताय मद्रुर बला हरिदास भज जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनो सह गो गण योज पानी सूजव सुकंदर कंद मूल बुलाऊ हे सखियों। अयम अद्रि अंगुली से दिखा कर कह रहे हैं गोवर्धन पर्वत को, यह पर्वत हरिदास वर्ज है, हरि के दासों में कृष्ण के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ। क्यों? कि जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इसे कृष्ण और बलराम के चरण का स्पर्श हमेशा मिलता रहता है, इससे बड़ा यह प्रमोद का अनुभव करता है, प्रकृष्ट मोद में रहता है, क्योंकि देखो इसको हमेशा रोमांच रहता है और हमेशा पसीना छूटता रहता है प्रेम के कारण। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो झरने झरते हैं या पानी जैसा रहता है, तो उसको कह रहे हैं कि ये इसको सूर्य उत्पन्न हो रहा है और आंसू गिर रहा है, और गौरों के लिए और गोपों के लिए यह पानी है, पानी देता है गौरों के लिए, गवत देता है, कंदरा देता है, कंद और मूल फल सब देता है। इस तरह हरिदास गोवर्धन भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कृष्ण को कंदरा देते हैं, कंदरा में से कृष्ण खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं, विश्राम करते हैं, तो अपने हृदय में हरिदास गोवर्धन कृष्ण को वास स्थान देते हैं, और बाहर भी घास कंद मूल फल लकड़ी दवा जल सब कुछ देते हैं, गायों को भोजन देते हैं। इस तरह यह हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ। भागवत में तीन जगह हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है, युधिष्ठिर महाराज के लिए, उद्धव जी के लिए और गिरिराज गोवर्धन के लिए। लेकिन गिरिराज गोवर्धन के लिए केवल हरिदास शब्द का प्रयोग नहीं, हरिदास वर्ज हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ। तो इस प्रकार गोवर्धन के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इस गीत का अंतिम श्लोक है, गा गोप तैरन बनम मय तोर गारा वेणु सुनहि कल्पदैस्तन वृक्ष सत्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्जोगपास कृतलक्षणय विचित्रम्। अहो हरिदास के रूप में, हरिदास वर्ज के रूप में गोवर्धन यथार्थ नामा है, सत्य है, लेकिन कृष्ण के संबंध से सखी चर और अचर सभी धन्य है, केवल हम लोगों को छोड़कर। तीर्ण भी धन्य है, पत्थर भी धन्य है, पशु पक्षी मनुष्य सब धन्य है। क्यों सखियो, गोपकल गोपालों के साथ जब श्री कृष्ण बन अनुबनन बने बने बनवन में गौ को चराते हुए घूमते हैं, तो उस समय निर्जोग और पास से विचित्र लगते हैं। निर्जोग का अर्थ होता है पाद बंधन रज्जु, निर्जोग कहते हैं गायों के पैर को बांधने के लिए छोटी सी रस्सी होती है दूहते समय, उसको निर्जोग कहते हैं। इधर गाय के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, कोई गाय दिखाई नहीं पड़ती है कहीं, घर घर में कुकुर दिखाई पड़ते हैं लेकिन गाय नहीं। ये अजीब जमाना है, क्या कहें। भगवान श्री कृष्ण के पास पूतना आए थे, तो पूतना के चले जाने के बाद गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा कर रही थी, गाय का गोबर टीका के रूप में करो, तिलक गए थे 12 जगह और पढ़ गए थे श्री केशवाय नमः श्री नारायण, नारायण तुम्हारी रक्षा करे, गोविंद तुम्हारी रक्षा करे, नारायण तुम्हारी रक्षा करे। गोबर से तिलक दे रहे गाय के गोबर से, और मूत से पहले स्नान कराए गाय के मूत से और गाय के रज से सर शरीर को सूर्य घी से लगाए, गाय का पोछ डुलाए, ये भागवत में लिखा हुआ है। बच्चे की रक्षा करने के लिए, आज तो बच्चे को कोई ऐसी विपत्ति आए और कोई सोचे कि गाय का गोबर थोड़ा सटाओ, गाय का मुंह लाओ, गोरज लाओ, पूछ हिलाओ, तो कोई नहीं मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन कुकुर का पोछ, कुकुर का गोह सब सुलभ है, घर घर में सुलभ है ना। कुकुर से खेलने के लिए लड़कों की सुविधा है, बल्कि असली कुकुर नहीं है तो ये बनावटी कुकुर खुला कर घर में रखते हैं, तो कुकुर के साथ खेलने वाले लड़के का दिमाग क्या होगा। खेलना ही है तो सिंह का रखना चाहिए, लाम का, घोड़ा का, हाथी का। हमारे भारतीय संस्कृति में यही विशेषता है, बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता था पहले तो हाथी घोड़ा गाय इससे खेलने का दिया जाता। और तुमने देखा एक घर में कृष्ण रक्षिता के घर में देखा, उनकी एक पुत्री और छोटी सी बेटी है तो 20-25 बिल्ली लाकर के रखी। मैंने कहा इतना रखने की क्या जरूरत है, माता जी कहते क्या करें वो हटा देने बाद रोने लगेगी। तो सवेरे उठने पर बिल्ली बिल्ली दर्शन होता है, दर्शन होता है। अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। एक बार की बात है, नैरोबी में मैं किसी के घर में जा रहा था, बाहर मंदिर से निकला कार में चढ़ने के लिए, तो मैं देखा कि पीछे कुत्ता बैठा है सीट के पीछे ऐसे। तो मैं ये नहीं समझा कि बनावटी कुत्ता है, इस ढंग से बैठा है। मैं उतर गया कार से, मैं सोचा कि चाटने न लगे चाहिए उसको, तो मैं उतर गया। तो और सब लोग बैठे थे तो मैंने बैठे बैठे, लेकिन मैंने साहस नहीं बना, तो मैं डर गया। और ये भी नहीं कह सकता था क्यों नहीं बैठ रहा है, संकोच हो रहा है। तब तक कोई आदमी एक पुस्तक ला कथा कहने के लिए, उसे कुत्ता के ऊपर रख दिया। कुछ देर के बाद देखा उसमें कोई स्पंदन नहीं है, कोई सुना नहीं, क्या वो बताती है। तब जाकर मैं भाग आया तो मेरे पीठ को चाटेगा। घर घर में कुकुर बानर, कई घरों में ऐसे गए हमें बानर लटका दिए, लंबी लंबी पूछ बानर, ये सब रखने की चीज है। अच्छा अच्छा लगना चाहिए, भगवान का फोटो रहे, भगवान का श्री विग्रह है, तो लड़कों का दिमाग उनका मन भी ऐसे ही उन्नत बनेगा, है कि नहीं? आप लोगों ने शायद सुना होगा दुष्यंत महाराज के पुत्र के घर पूर्व महाराज के कुल में, तो वे भरत बाघ और सिंह से खेला करते थे बचपन में, और बाघ सिंह को वे कान पकड़ करके खींचते थे आराम करते, ऐसा करता है। तो श्री कृष्ण भगवान भी इस जगत में आते हैं तो गऊ चलाते हैं, गऊ के बांधने के लिए जो रस्सी होती है तो कई रस्सी को ऐसे कंधे पर लेकर के ढोए चलते, ढोते हुए चलते, तो निर्जोग कहते हैं। पास कार है बदमाश गऊओं को बांधने के लिए बड़ी रस्सी होती है उसको भी लेकर के चलते। ये देखिए ब्रज में कोई ऐसी गाय नहीं है लेकिन भगवान की लीला में रस उत्पन्न करने के लिए कुछ बदमाश गऊ भी रहती है तो उनको बांधने के लिए बड़ी रस्सी रहती है। रस्सी कहाँ रखते हैं घर में ना, ऐसे लगे कि ये कंधा नहीं इधर उधर, और गाय के नोए कहते हैं पिछला पैर बांधे रहते उसको अपने सिर में लपेट लिया, वास्तविक गोपाल गोपाल। अपना अपना ऐसे तो होता है, जिसमें मान लीजिए कार लेकर के चलते हैं तो कभी बिगड़ जाए कार तो उसको जड़ लेकर के चलते हैं, है कि नहीं? रिंच स्क्रूट और कई चीज लेकर चलते हैं। तो गाय चराने चले ही हैं भगवान तो बन धन का लेकर के चलना होगा, है कि नहीं? तो इससे बहुत सुंदर लगते हैं, जितना माला पहन करके कुछ सुंदर लगते हैं उतना ही गायों को बांधने के लिए रस्सी भी लेकर के सुंदर लगते हैं। सुंदर है कि सुंदर है, सुंदर वे क्या असुंदर लगता है, जो कुछ धारण करता है वही सुंदर लगने लगता है। श्री कृष्ण बंधन और नोए को लेकर के चलते बहुत सुंदर लगता है। उस समय जब वन में चलते हैं तो उनके बांसुरी के गीत को सुनकर उनको देख करके अस्पंदनम गति होता है, जो गतिमान जीव है वो अस्पंदन शून्य हो जाता है, उनमें कोई हिल डुल नहीं सकता, जड़ हो जाता है। और पुलकस तरुणा और तरुणों में वृक्षों में पुलक होता है, मतलब जड़ में जंगम का धर्म आ जाता है और जंगम में जड़ का धर्म आ जाता है, चेतन अचेतन हो जाते हैं और अचेतन चेतन हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। इस तरह चर और अचर सभी धन्य है, सभी कृष्ण को देखते हैं, सभी कृष्ण से प्रभावित हैं, केवल हमारे ऊपर विधाता ने पाबंदी लगाया है। तो इतना पावर सब कहती हैं सखी गरी सखी, लोक धर्म को वेद धर्म को परिवार की मर्यादा को तिलांजलि दो और चलो, जो कुछ होना वो होगा वो देखा जाए अब हो गया, जब सारी दुनिया सभी चार अचर सभी कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते, घर क्या करेंगे परिवार के लोग क्या करेंगे, चलो 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 ये कहती है हम जा नहीं पाएंगे इस तरह से हमेशा कृष्ण की लीला का वर्णन करते रहते हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारण वर्णन तो मिथो क्रीड़ा स्तंभ। वृंदावन चारी वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण के एवं विधा या क्रीड़ा इस प्रकार की जो भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं को गोपियां आपस में करती रहती थी, हमसे दिन भर यही काम रहता है केवल कृष्ण के विषय में बात करना। कृष्ण कथा हमेशा चलती रहती, हमेशा बातचीत चलती रहती थी, और कृष्ण कथा बोलते बोलते कृष्ण के विषय में बातचीत करते करते तन्मय होता, कृष्णमयी हो जाती थी, मतलब कृष्ण के साथ ही हो जाती थी। जब बातचीत करती थी तो उन्हें यही महसूस होता था कि मैं हम कृष्ण के साथ हूँ, वो भूल जाते थे घर और घर, उन लीलाओं में शामिल हो जाती थी, प्रकाश संसार को भूल जाते थे, इस तरह आनंद में मग्न हो जाते थे। तो ये है बिहारी भगवान श्री कृष्ण की लीला दोनों गीत, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कथा खत्म करने का विधान नहीं है, एक अध्याय और कहने का विधान है। सस्ते जैसे कृष्ण क्षीर हरण किए और गोपियों को कहे कि आगामी शरद काल में तुम्हारे साथ मेरा विहार होगा, तो क्या हमें वहां कथा बंद करता है, मेरा तो यहाँ समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि गोपियों का भगवान ने क्षीर हरण किया और उन्हें वर दिया, जैसे अन्य कथाकार कहा करते हैं, एक एक अध्याय एक लाइन में कहा करते हैं जो मैं एक वाक्य में कथा का ऐसे भी कथा होती है इस तरह से तो एक दिन में बारह स्कंद हो सकता है। जी हाँ, पति का नाम बहुत जरूरी। तो इस प्रकार यह कथा पूरी हुई। आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया और बहुत सम्मान के साथ आप लोगों ने कथा को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने गुरु भाई डॉक्टर श्याम सिंह जी, पहला नाम लिया रहा था श्याम ऋषि जी, जिनको डॉक्टर महाजन के नाम से सब लोग जानते हैं, उन्होंने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया। इस तरह से कथा सुनने में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा आदर है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा आदर है। तो उन्होंने दिया और अपने परिवार के साथ, पत्नी से, मनोरंजन के साथ प्रतिदिन आए, बहुत दूर से आते हैं सब लोग जानते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने से चश्मन दिया और आज के दिन कथा में आए हो। अपने गुरु भाई से आराध्य प्रभु जी का मैं ऋणी हूँ, दर्शन दिया तीन से लगाते हैं, तो सबको हाथ ऊपर करके से जान जाएगा जी के फीस में मेरे गुरु भाई पर सब कथा में आए थे तीन से। और इसके साथ ही मैं कुछ भक्तों का नाम लिखा हूँ, बोल रहा हूँ, बहुत कुछ सामने नाम याद है, और जिनके घर में अच्छा है जिन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, और मैं उसे श्रद्धा में व्यक्त नहीं कर सकता। बिंदा रामचंद्र प्रभु और उनकी धर्म पत्नी जसोमती देवी दासी, बहुत समय के रात दिन सेवा में लगे हैं, कथा सुनना, व्यवस्था करना, सब कुछ। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से कामना करता हूँ कि उनकी मति भगवान कृष्ण हमेशा लगी रहे।
Shashini kalanka kalva